Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ananta Shri Vibhushita Pratasmaraniya Shrotriya Brahmanishtha महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए अनंतश्री विभूषित प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए आदरणीय आत्मस्वरूप मधुबाबू जी, समस्त पवित्र आत्मा साधक जन श्रोताजन, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। बालक नचिकेता ने ब्रह्म तत्व के बारे में बहुत सुंदर एक सूचना दी। उन्होंने कहा कि वो आत्म तत्व धर्म से परे है। कल आप लोगों ने सुना, धर्म एक साधन है। जैसे मंत्र साधना, जप, ध्यान आदि जितने भी साधन हैं, ये सब परमात्मा को पाने के उपकरण है। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और उपासना अथवा ध्यान से उपासना और ध्यान से उसको बालक को बोल देना, पानी लेना, गर्म पानी थोड़ा सा, उपासना और ध्यान से चित्त में एकाग्रता आ जाती है। ये दो साधन हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। निष्काम कर्म योग, कर्म में किसी भी प्रकार की कामना ना हो, हमारे जीवन में जो भी कर्म, चाहे वो तन से हो चाहे मन से, उसमें कामना आते ही वो कर्म दूषित हो जाता है। कामना एक स्वार्थ है। कामना हमारे मन का कलुष है। हम कोई चीज कर रहे हैं और उसमें हमारी निजी कामना है, वो कामना तत्क्षण उस कर्म को दूषित बना देती है और वो कामना हमारी अनेक कामनाओं को पैदा कर देती है। और कामना ही तो मन की अस्थिरता है, कामना ही तो हमारे मन के शांति का भंग करने वाली है। इसलिए शास्त्र ने कहा, उस अकाम आत्म तत्व को पाना है तो हमें निष्काम होने की आदत डालनी चाहिए। और ये निष्काम होने की आदत का अर्थ है निष्काम कर्मयोग। हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार की चाह कामना नहीं, केवल परमात्मा ही कामना है। धीरे धीरे वो निष्काम कर्म हमारे अंतःकरण को शुद्ध बना देता है। धीरे धीरे हमारा चित्त निष्काम होने लगता है। इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य भगवत पूज्यपाद ने कहा, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्ध है। दुनिया में जितने भी कर्म हैं, ये सभी कर्म हमारे चित्त को शुद्ध बनाने वाले हैं। बोले न तु वस्तुपलब्ध है, कर्म के द्वारा जाया जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है। कर्म के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। हम कर्म के द्वारा वस्तु में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन कर्म के द्वारा वस्तु को जानना संभव नहीं है। जानने के लिए तो आंख चाहिए, जानने की प्रक्रिया अलग है और जाने की प्रक्रिया अलग है। जाने की प्रक्रिया का ही नाम कर्म है। जैसे मान लीजिए कि किसी गुफा में गहन अंधकार है और उस अंधकार को आपको दूर करना है। कौन से उपाय से आप उस अंधकार को दूर करेंगे? आप सोचेंगे कि वहां बैठकर हम जप करेंगे, बहुत बड़ा आप अनुष्ठान लेंगे वहां बैठकर, वहां आप ध्यान भी करेंगे तो भी अंधकार नहीं भगेगा। गुफा के बाहर आप पूजा पाठ, ध्यान, योग, साधना, हवन, आप कुछ भी करो, प्रार्थना करो उस अंधकार को, भैया तुम भागो थोड़ा। अनेकों उपाय करने के बाद भी गुफा का जो अंधकार है वो नहीं भागता है, क्योंकि उसका उसके साथ विरोध नहीं है। अंधकार का और पूजा पाठ का कोई विरोध नहीं है। ऐसे ही कर्म का और अज्ञान का कोई विरोध नहीं है। उल्टा अज्ञान हमारे कर्म का साधक है, कर्म और अज्ञान की मित्रता है। इसलिए आप विचार करते समय इसकी जोड़ी बना लेते हैं, अविद्या, कामना और कर्म। अविद्या से तो कर्म निकलता है, वो कर्म अविद्या का विरोधी कैसे होगा? जो कर्म अविद्या से निकलता है, अविद्या का कार्य है, वो कर्म अविद्या का कभी विरोधी नहीं हो सकता है। तो अविद्या का विरोधी कौन होगा फिर? जैसे अंधकार का विरोधी वहां का कर्मकांड नहीं हो सकता है। आप वहां जाकर के थोड़ा मोमबत्ती जला दीजिए, तार जला दीजिए, प्रकाश की व्यवस्था कीजिए, और जैसे ही प्रकाश की व्यवस्था हो जाती है, आश्चर्य, वो अंधकार अपने आप वहां से विदा हो जाता है। अरे उसका तो नामो निशाना आपको मालूम नहीं पड़ता है। जब वो अंधकार मिटता है तो उसके कोई अवशेष आपको मालूम पड़ते हैं क्या? जैसा कोई घड़ा फूट जाता है तो उसके अवशेष मालूम पड़ते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है, अंधकार विदा हो जाता है। प्रकाश और अंधकार का विरोध है। ऐसे ज्ञान और अज्ञान का विरोध है, कर्म का विरोध नहीं है। इसलिए दुनिया में जितनी भी कर्म है, यही तो धर्म है। यहां धर्म शब्द से संपूर्ण क्रियात्मक जो कर्म है उसका निर्देशन कर रहे हैं यहां बालक नचिकेता। वो परम तत्व परमात्मा आपके धर्म से परे हैं, माने जितने भी क्रिया कर्म कर्म कांडात्मक साधन है जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध और एकाग्र बनाने वाले हैं, उससे परे आत्म तत्व है, क्योंकि ये सारे साधन है ना। जैसे आपको गुफा का अंधकार भगाना है तो भगाने के लिए माचिस भी तो चाहिए, आपको आग जलाना है तो लकड़ी भी तो चाहिए, जलाने वाला आदमी भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। वहां प्रकाश के जलाने के जितने भी साधन उपकरण सहयोगी हैं वो सभी अंधकार के मिटाने के प्रति कारण जरूर हैं, लेकिन वो बहुत परंपराया। अंधकार मिटता है माचिस से, और आपने माचिस वहां जाके रख दी गुफा के अंदर, अब उससे अंधकार नहीं मिटने वाला, वहां प्रक्रिया करनी पड़ेगी, प्रकाश को जलाने के लिए सारे आयोजन जुटाने पड़े। ऐसे जितने भी कर्म हमारे जीवन में हैं, वो सारे कर्म धर्म ये परमात्मा के पाने के परंपरागत कारण है, और उससे परे परमात्मा है, ये साधन है, और वो परमात्मा आत्म तत्व जो स्वस्वरूप है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। बालक नचिकेता ने कहा धर्मात अन्यत्र, वो तत्व धर्म से परे हैं, कर्म से परे हैं, साधन से परे हैं। कर्म धर्म ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं, अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश करते हुए 18वें अध्याय में बात कही, बहुत सुंदर, और भगवान ने अर्जुन के लिए कही है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज, हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। भगवान को यदि हमको कहना होता तो क्या कहते मधुबाबू जी? यदि आम आदमी को भगवान को कहना होता इसी बात को तो भगवान क्या कहते? किसी भी व्यक्ति को किसी चीज का त्याग करने के लिए कहा जाता है, उस चीज का उसमें होना बहुत जरूरी है। एक महात्मा जी एक किसी सदगृहस्थ के घर में भोजन करने के लिए गए, उसके साथ बहुत सारे लोग थे और भी दो तीन महात्मा भी साथ थे। तो भक्त ने प्रार्थना की कि महाराज हमको दो चार शब्दों में कुछ आशीर्वाद दो, उपदेश करो। महात्मा जी ने अपने साथ वाले महात्मा को इशारा किया, बोले आप उपदेश करो, थोड़ा ज्ञान का उपदेश करो। उस महात्मा ने उपदेश करना शुरू कर दिया कि भैया बीड़ी नहीं पीना चाहिए, और यहां जितने भी लोग हैं बोले आप बीड़ी पीना छोड़ दो, तुम लोग तंबाकू खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो। उसके ऊपर आधा घंटा तक बोलते रहे, और जैसे उन्होंने पूर्ण विराम किया, अपने वक्तव्य को पूर्ण विराम दिया, सभी घर के लोग हंसने लगे। तो महात्मा जी ने पूछा भैया हंस क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा कि महाराज जो जो चीजें आपने छोड़ने के लिए हमको कही वो चीजें हमारे में है ही नहीं, हमारे घर में कोई नहीं बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू नहीं खाता है, कोई शराब नहीं पीता है। अब आपने जो भी चीजें हमारे लिए बोली उसमें से एक भी चीज हमारे ऊपर घटती नहीं, आप समझ गए कि नहीं बात को? मैं आपको कहूं कि आप बीड़ी छोड़ो मधु बाबू, बीड़ी छोड़ो, मैं आप क्या महाराज, मैं तो बीड़ी पीता ही नहीं, कहां से छोड़ू मैं? आप उसके लिए कह सकते हैं जो बीड़ी पीता है, आप बोल सकते हैं आप बीड़ी छोड़ो। आज भगवान क्या बोल रहे अर्जुन को? धर्म को छोड़ो बोल रहे हैं, और सर्वधर्मान, छोटे मोटे धर्म की बात नहीं बोल, भगवान को दे जितने भी तुम्हारे अंदर धर्म है सबको छोड़ दो। अब आम आदमी जिसके अंदर धर्म ही नहीं है, जो अधर्म के पुंज बने हुए हैं, आप उसको भगवान को यदि ज्ञान का उपदेश करना होगा तो क्या बोलेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य बोलेंगे। वहां तो धर्म है ही नहीं। वहां भगवान बोलेंगे भैया सर्वान अधर्मान परित्यज्य और धर्मम भजस्व, तुम संपूर्ण अधार्मिक वृत्तियों का परित्याग करो और धर्म को स्वीकार करो, पहले धर्म को रास्ते पर तो आओ। धार्मिक होने का अर्थ है रास्ते पर आना, धार्मिक होने का अर्थ है रास्ते पर चलना। आदमी रास्ते पर ही नहीं है और उसको बोल दे कि भैया रास्ता छोड़ दे, आदमी नाव में बैठा ही नहीं और उस आदमी को बोले कि किनारे तक पहुंचने के लिए नाव छोड़ो, पहले नाव को छोड़ने के लिए नाव को पकड़ना तो होगा ना, ये प्रक्रिया है। नदी को पार करने की प्रक्रिया है, पहले नाव को पकड़ो, और केवल नाव को पकड़ने से आदमी उस किनारे तक नहीं पहुंचता है। नाव में बैठने के बाद नाव को चलाना भी पड़ता है। धर्म तो है हमारे पास, बहुत सारी चीज हम जानते भी हैं, लेकिन उस पर यदि आचरण नहीं है तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। नाव को चलाना पड़ेगा, और नाव को चला भी दी तो आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं? नहीं। वह एक बड़ी मजेदार बात, नाव को कितना भी चलाओ तब तक नाव आगे नहीं बढ़ती, किनारे पर रस्सी भी तो बंधी है, किनारे की रस्सी को छोड़ना पड़ेगा। आ सकती है या हमें पीछे खींचती है। कल एक कोई माताजी मिलने के लिए आई, वो रोने लगी हो, और रोते हुए उन्हें कहा कि महाराज मैं बहुत कुछ साधना करना चाहती हूं, जप करना चाहती हूं, ध्यान करना चाहती हूं और मन से चाहती हूं, लेकिन मैं क्या करूं, एक माला जप कर पाती हूं मैं, और उसके बाद फिर इतनी सारी दिमाग की उलझने आ जाती सामने। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक शुभ समाचार है। वो करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पा रही, वो पीछे खींच रही आ सकती हैं। कभी लंदन याद आता है, लंदन में बेटी हैं, कभी अमेरिका याद आता है, वहां बेटा है, बहुत सारी दिमाग की चीजें उलझ में उलझने आ सकती हैं, लेकिन एक मन है जो सोचता है कि नाव को आगे बढ़ा दो, लेकिन पीछे आसक्ति के बंधन उसको पीछे खींचते हैं। कम से कम आपको मालूम तो हो रहा है ना, हमको करना है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसी को तो साधक बोलते हैं। साधक का अर्थ यही है, उसके मन में पीड़ा है, परमात्मा को जानने की पीड़ा है, स्वधर्म का आचरण नहीं करने की पीड़ा है, साधना नहीं करने की पीड़ा, यह आपको आगे बढ़ाएगी। आपने आज जप नहीं किया, इसकी पीड़ा है कि नहीं, हो रही कि नहीं? आज आपने सत्संग में नहीं आने का काम किया है तो आपको पीड़ा हुई कि नहीं? भैया आज हमारा सत्संग छूटा है, ऐसा लगा क्या आपको? तो समझना वो साधना है, आप साधना में हैं, सत्संग आपकी अंतरात्मा है, मालूम होना चाहिए। जैसे करना मालूम पड़ता है वैसे नहीं करना भी मालूम होना चाहिए। जैसे हमको खाना मालूम पड़ता है और नहीं खाना भी मालूम पड़ता है, आपको मालूम होता, अरे आज तो हमने नाश्ता नहीं किया, सत्संग में आए चाय पी के नहीं आए, आपकी आदत है, अभी आप सत्संग में बैठे हैं लेकिन चाय नहीं पिए हैं, तो आपका मन बार बार चाय में जाता है कि नहीं? आपका मन बार बार कहेगा अरे क्या फर्क पड़ता, दो मिनट लेट पहुंचते, पी के आना चाहिए था, पी के आना चाहिए था। आपको नहीं पीना भी, चाय नहीं पीना भी मालूम पड़ रहा है, नाश्ता नहीं करना भी मालूम पड़ रहा है, ऐसे भजन नहीं करना मालूम होता है कि नहीं? करना भी मालूम होना चाहिए, और भजन नहीं करना भी मालूम होना चाहिए, वेदना बननी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं करते हैं तो आपको पीड़ा होती है, और वो पीड़ा ही आपको करने में ले जाएगी। नाव में बैठने के बाद किनारे की रस्सी को छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद आप आराम से नाव को आगे बढ़ाते हो, नदी को पार कर सकते हैं, लेकिन उस किनारे पर जाने के बाद आपको नाव को भी छोड़ना पड़ता है। इस किनारे नाव को पकड़ना और उस किनारे जाकर नाव को छोड़ना, पहले रास्ते में तो आ जाए। रास्ते को छोड़ने के लिए पहले रास्ते पर आना पड़ता है, नाव को छोड़ने के लिए पहले नाव में बैठना पड़ता है, और नाव में बैठा ही नहीं आदमी इसी पार है, और आदमी बोले उसको कि भैया नाव छोड़ दे, तुमको नाव तो छोड़ना ही है, उस किनारे जाके भी छोड़ना ही है, तो तुम इसी किनारे क्यों नहीं छोड़ते हो, तुम्हारा समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और कोई बुद्धिमान आदमी अपने को समझकर छोड़ दे तो उस किनारे जाएगा क्या। भगवान ने बहुत गहरी बात बोली है, धर्मान सर्वधर्मान परिचय, भगवान ने उस आदमी को बोला जो परम धर्म को उपलब्ध है। वहां जितने भी लोग धार्मिक थे उन धार्मिक लोगों में सर्वोच्च धार्मिक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, अर्जुन सर्वोच्च धार्मिक, और उस सर्वोच्च धार्मिक आदमी को भगवान कह रहे हैं तुम संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दो, अब तुमने अपने जीवन को धर्म से बांधा, नीति नियमों का पालन किया, अपने जीवन का निर्माण किया, धर्म जीवन के निर्माण की प्रक्रिया है, ये साधन है, अंतिम सत्य नहीं है। जैसे साबुन है, आपने साबुन कपड़े को लगा दी और बहुत स्वच्छ आपके कपड़े बने, अब क्या करोगे, उस साबुन को साइड करो, कपड़ों ने चमक आ गई, कपड़ों में चमक आ गई है और उस साबुन के कारण आई, अब आप उस साबुन को छाती में लगा के घूमोगे। आदमी कपड़े को देखता है, कपड़े की चमक देखता है, दृष्टि कपड़े पर होती है, साबुन को कोई याद नहीं करता है, साबुन को कभी कोई धन्यवाद भी देता है क्या। धर्म तो केवल साबुन की तरह है, नीति नियम अनुष्ठान कर्म ये सारी चीजें हमारे अंतःकरण को निर्मल करते हैं, हमारे अंतःकरण को एकाग्र करते हैं। भगवान ने कहा तुमने बहुत जीवन में अनुष्ठान किया धर्म का, नीति नियमों का, और अब तुम अंतिम मोड़ पर इस किनारे पर खड़े हो, बिल्कुल किनारे पर। और जब भगवान कह रहे थे सर्वधर्मान परित्यज्य, तो मानो हाथ भी आगे होगा भगवान, आओ आओ आओ, अब तुम कौन से नीति नियमों में बंधे हुए हो, तुमने सत्य को पाने के लिए सारे आयोजन किए, कर्मों का अनुष्ठान किया, अब तुम सत्य को पाने के अधिकारी बन गए हो, अब ये जितने भी साधन है उसका परित्याग करो और तुम मेरे पास आओ, जैसे नाव को छोड़ो तो किनारे पर आ जाओ। इसलिए भगवान ने अर्जुन के लिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, क्योंकि धर्म एक साधन है और साधन को पार किए बिना सिद्धि को पाना संभव नहीं है, रास्ते को छोड़े बिना मंजिल को पाना संभव नहीं है, बात सत्य है। आप रास्ते पर खड़े हैं, आप रास्ते को नहीं छोड़ेंगे तो घर में कैसे आएंगे, घर आपके जीवन की मंजिल है और आप रास्ते में खड़े हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा, रास्ता छोड़ना पड़ेगा, रास्ता छोड़ेंगे तब आप अंदर आ पाएंगे। इसलिए भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य बात जो कही एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए कही है, और यदि कोई अधार्मिक व्यक्ति भगवान के सामने होता तो भगवान ये कहते हैं अधर्मान परित्यज्य प्रथमम धर्मम भजस्व, तुम अधर्मों का परित्याग कर, अधार्मिक वृत्तियों का त्याग कर धर्म वृत्ति को स्वीकार करो, धर्म पथ पर चलो, अपने जीवन का निर्माण करो, और अंतिम सत्य आत्म तत्व को पाने के लिए तुम अंत में धर्म का भी परित्याग कर। आज बालक नचिकेता ने यह निर्देश किया कि सत्य आत्म तत्व जिसको मैं जानना चाहता हूं, बोलो धर्म से परे है और वो अधर्म से भी परे है। हम अधार्मिक वृत्तियों को स्वीकार कर उसको नहीं जान सकते हैं। धर्म माने पथ पर चलना, नीति नियमों में चलना, और अधर्म माने नियमों के विरुद्ध चलना, रास्ता भटक के चलना। तो जो आदमी रास्ते पर चलता है वो परमात्मा को पाएगा, जिसके पास कोई रास्ता ही नहीं है अथवा जो भटके हुए रास्ते पर चल रहा है उसको परमात्मा कैसे मिले। अधर्म से भी वो तत्व परे हैं और वो धर्म से भी परे हैं, और वो कैसे है तत्व, तो कहते अन्यत्र अस्मात् कृता कृता। वो तत्व क्रिया, वो तत्व कार्य और कारण से भी परे हैं और गहराई में ले जा रहे हैं। बालक नचिकेता उस परमात्मा की जो गहराई है, उसका जो स्वभाव, उसमें प्रवेश दिला रहे हैं। कार्य और करण के संघात से वो तत्व परे हैं। बालक नचिकेता कहना चाहते हैं कि मैं लोक लोकांतरों को नहीं चाहता हूं। आपके सामने जितने भी लोक लोकांतर हैं, जैसे स्वर्ग हैं, आप श्रवण करते ब्रह्मलोक हैं, विष्णु लोक हैं, वैकुंठ, साकेत, गोलोक। बालक नचिकेता ने कहा वो सारे कार्य हैं। कार्य जो भी कार्य होता है वो क्रिया साध्य होता है, और जो वस्तु क्रिया साध्य होती है वो यहां नहीं होती, वो बहुत दूर होती है। जो भी वस्तु क्रिया साध्य है, जो कार्य है वो क्रिया साध्य है, कार्य माने जो कारणों से पैदा हुई वस्तु। जो वस्तु कार्य है वो क्रियाओं कारणों के समुदाय से पैदा होती है। जैसे आपको एक मकान बनाना है तो मकान कार्य हुआ, और वो मकान जो बना वो कैसे बना, आपने बहुत सारे कारण समुदाय को जुटाया और उन कारण समुदाय से आपने मकान बना लिया, वो मकान कार्य हुआ, और कार्य होने के कारण वो संपूर्ण कारण समुदायों का प्रोडक्शन हो गया, वो कारण का साध्य हो गया। और जहां पर भी कार्य पैदा होता है कारणों के समुदाय से, वो क्रिया सापेक्ष होता है। कार्य हमेशा क्रिया सापेक्ष होता है, क्रिया के बिना कार्य का होना संभव नहीं है। आप बहुत छोटी सी चीज पैदा करना चाह रहे हैं, पैदा करना चाह रहे हैं, कोई चीज आप बनाना चाह रहे हैं। मान लो आप चाय बनाना चाह रहे हैं, तो आप निष्क्रिय होकर चाय कैसे बनाएंगे। आप एक हस्ताक्षर करना चाह रहे हैं, तो आप हस्ताक्षर निष्क्रिय होकर करोगे क्या। भाई कितना भी आपको कम करना हो, कम से कम पेन में हाथ, पेन तो हाथ में लेना पड़ेगा, पेन चलाना तो पड़ेगा। बहुत छोटा सा हस्ताक्षर है आपका, आपको एक छोटी सी लकीर भी खींचना है, या आपको एक बिंदी देना है, पूर्ण विराम देना है, वो क्रिया साध्य है, वो कार्य है। तो आप उसको अक्रिया से संपादित नहीं कर सकते, वो क्रिया साध्य है। दुनिया के जितने भी कार्य हैं वो क्रिया साध्य है, और जो वस्तु क्रिया साध्य नहीं होती है, क्रिया साध्य होती है वो वस्तु आपसे थोड़ा डिस्टेंस दूरी पर होती है। आपको हाथ तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। दो ही चीजें हैं, आपके गोद में चीज रखी है और उस रखी हुई चीज को आपको उठाना है, थोड़ी दूरी तो मानना पड़ेगा आपको। आपने थाली में रखे हुए ग्रास को उठाकर मुख में लेना चाहा, उस ग्रास का और मुख का अंतर तो है, उस अंतर को पाटने का ही तो नाम खाना है, और क्या है।